नमस्कार। रेडियो मधुबन के पठामी संस्कृतम कार्यक्रम को सुनने वाले आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत। हो गए तुम सब तैयार फिर एक बार संस्कृत पढ़ने के लिए? तो आओ आज हम पढ़ेंगे कुछ भविष्यकाल दर्शक शब्द। हिंदी में भी भविष्यकाल को दिखाने के लिए हम कहते हैं करूंगी, देखूंगी, जाओगे, पढ़ोगे, खेलेगा, दौड़ेंगे इत्यादि। ये सारे शब्दों के रूप दर्शाते हैं कि कुछ क्रियाएं हैं जो भविष्यकाल में होने वाली हैं। तो हिंदी में भी जब हमें भविष्यकाल दर्शाना होता है तो शब्दों का रूप बदल जाता है। इसी प्रकार संस्कृत में भी धातुओं के साथ, क्रियाओं के साथ लृट लकार लगाने से धातु का जो रूप बन जाता है वह रूप भविष्यकाल को, या थोड़ा विस्तार से कहूँ कि जो सन्निकट भविष्यकाल है इसको दर्शाता है। तो आज का प्रारंभ हम करेंगे कुछ बहुत सुंदर श्लोकों के साथ, ताकि तुम भविष्यकाल के नियमों को समझते हुए साथ साथ कुछ अच्छे श्लोक भी सुन लो और याद कर लो। आओ देखते हैं एक बहुत ही सुंदर श्लोक जो पढ़ने के बाद तुम कवि की कल्पना पर आश्चर्य करने लगोगे कि कवि कहाँ कहाँ से कल्पनाएं ढूंढ लाता है, क्या क्या देखता है, क्या क्या निरीक्षण करता है और उसे कैसे खूबसूरती के साथ अपनी कविता में ढालता है। ये श्लोक है, रात्रिर गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम् भास्वानुदेश्यति हसिष्यति पंकजश्रीः इत्थं विचारयति कोशगते द्विरेफे हा हंत हंत नलिनिम गज उज्जहार। ये श्लोक इस प्रकार है कि रात्रिर गमिष्यति, रात बीत जाएगी, रात चली जाएगी, भविष्यति सुप्रभातम, एक सुंदर सुबह होगी, भास्वान उदेश्यति अर्थात सूरज उगेगा, हसिष्यति पंकज श्रीहि, हसिष्यति अर्थात हंसेगी, पंकज श्रीहि यानी कमल हंस पड़ेगा, कमल का फूल हंस पड़ेगा, अर्थात जो कमल का फूल रात में मुंद गया है, उसकी पंखुड़ियां बंद हो गई हैं, वो सूरज के आने पर वो पंखुड़ियां खुल जाएंगी और मानो ये कमल का फूल खिलखिलाकर हंसने लगेगा, मुस्कुरा पड़ेगा। तो इसलिए हसिष्यति पंकज श्रीहि, और उसके खिलखिलाने से उसकी सुंदर शोभा जो है वो चारों तरफ दिखेगी। तो इसलिए हसिष्यति पंकज श्रीहि। तो ये देखे तुमने चारों शब्द, गमिष्यति, भविष्यति, उदेश्यति और हसिष्यति, ये चारों शब्द जो हैं ये भविष्यकाल को दर्शा रहे हैं। और ये तुम्हें समझ में आ गया होगा कि ये सारे के सारे प्रथम पुरुष के और एक वचन के शब्द हैं। रात बीतेगी, सुबह होगी, सूरज उगेगा और कमल की सुंदरता हंसेगी। तो ये चारों भविष्यकालीन शब्द हुए। और अब इस संस्कृत श्लोक का अर्थ भी देखते हैं कि आगे कवि क्या कहता है। ये जो चारों बातें हैं ये कमल के फूल के अंदर कैद हुआ एक भंवरा है जो ये चारों बातें सोच रहा है। कवि देखता है कि कमल के फूल पर भंवरे घूमते हैं, पराग कण पर बैठते हैं, मधु खाते हैं और उड़ जाते हैं, लेकिन कभी कभी संध्या के समय भंवरे कमल पर बैठे होते हैं और सूरज डूबने के बाद जैसे कमल की पंखुड़ियां बंद होने लगती हैं, तो कुछ भंवरे हैं जो फिर भी पराग कणों का लालच नहीं छोड़ पाते और कमल पर ही बैठे रहते हैं, तो कमल की पंखुड़ियां बंद होने पर वे कमल में कैद हो जाते हैं। इस बात को कवि ने कहीं देखा तो अब उसी का वर्णन करके कवि कहता है कि ये सारी बातें सोच रहा है, कौन सोच रहा है, तो कमल के फूल के अंदर जो एक कैद हुआ भंवरा वो सोच रहा है कि चिंता की कोई बात नहीं, कल सुबह जब ये सब होगा तो मैं उड़ जाऊंगा। लेकिन भाग्य कुछ और भी होता है, दैव कुछ और भी कह सकता है, तो ये भी कवि देखता है और ये एक दूसरी बात कवि निरीक्षण करता है और दोनों को साथ साथ जोड़ता है। कवि देखता है कि कई बार जहाँ पर कमल खिले होते हैं वहाँ रात में नहाने के लिए हाथी आते हैं और उन हाथियों के कारण कमल के फूल टूट जाते हैं। तो यहाँ पर कवि कहता है, हा हंत हंत, अर्थात हाय रे दुर्भाग्य, नलिनिम गज उज्जहार, उस कमल के फूल को एक हाथी ने उखाड़ करके फेंक दिया, अर्थात अब उस कमल की पंखुड़ियां खुलेंगी ही नहीं, भले ही कितनी ही अच्छी सुबह हो, कितना ही अच्छा सूरज उगे, लेकिन कमल की पंखुड़ियां नहीं खुल सकती, क्योंकि वो कमल जो है वो अपनी डंडी से टूट करके नीचे गिर गया है, तो अब उसकी पंखुड़ियां नहीं खुल सकती हैं। तो देखो कि कहां से कहां कवि पहुंचा देता है और कितने अच्छे पाठ हमें पढ़ा जाता है कि समय रहते अगर हमने काम नहीं किया और विचार करने लगे कि अरे ये तो बाद में भी हो जाएगा, लेकिन संभव है कि दैव कहीं पर बैठा हो, घात लगा रहा हो और वो काम ना होने दे, इसलिए काम को समय पर कर लिया। ऐसे कई विचार कवि के मन में आते हैं, कवि उन्हें संक्षेप में हमारे सामने रखता है और हमारी कल्पनाओं पर छोड़ देता है कि आगे की कल्पना तुम करो, देखें तुम्हारी कल्पना कहाँ तक चलती है। बहरहाल इस कवि के निरीक्षण शक्ति को प्रणाम करते हुए चलो आगे हम कुछ और श्लोक पढ़ेंगे। ये अगले कुछ श्लोक मैंने लिए हैं भगवद्गीता के 16वें अध्याय से। इनके माध्यम से भी हम भविष्य काल के शब्दों को समझेंगे। श्लोक है, इदम अद्य मया लब्धम, इदम प्राप्से मनोरथम, इदम अस्ति इदमपि मे, भविष्यति पुनर्धनम्। अर्थात इदम अद्य मया लब्धम, आज मुझे यह मिला है, इदम प्राप्से मनोरथम, और ये मेरा दूसरा मनोरथ है, वो भी मैं पाने वाला हूँ, प्राप्से पाने वाला हूँ। इदम अस्ति इदमपि मे, आज मेरे पास यह संपत्ति है, भविष्यति पुनर्धनम्, आगे भी मेरे पास वो संपत्ति होने वाली है। असौ मया हतः शत्रुः, आज मेरे द्वारा ये शत्रु मारा गया है, हनिष्ये च परानपि, आगे भी मैं शत्रु को मारूंगा। ईश्वरोऽहम् भोगी, सिद्धोऽहम् बलवान सुखी, अर्थात मैं ईश्वर हूँ, बलवान हूँ, सुखी हूँ, सिद्ध हूँ इत्यादि। आढ्योभिजनवानस्मि, कोन्योस्ति सदृशो मया, मैं बहुत धनी पैदा हुआ हूँ, अच्छे घर में मैं जन्मा हूँ, मेरे समान कोई नहीं है। और आगे, यक्षे दास्यामि मोदिष्ये इत्यज्ञान विमोहितः, अर्थात मैं यज्ञ करूँगा, मैं दान दूंगा, मैं मोदिष्य, मैं खुश हो जाऊंगा, मैं आनंद उठाऊंगा, इस प्रकार के अज्ञान में व्यक्ति विमोहित होता है। तो यहाँ पर भी जो भविष्यकाल को दर्शाने वाले शब्द हैं वो इस प्रकार हैं, प्राप्स्ये, हनिष्ये, यक्षे, मोदिष्ये। तो इतना बता दूं कि ये चारों शब्द उत्तम पुरुष के एक वचन को दर्शाते हैं। अगर हम पहले चार शब्दों को देखें, भविष्यति, गमिष्यति, उदेष्यति, हसिष्यति, वे प्रथम पुरुष के एक वचन हैं, तो उनके उत्तम पुरुष के एक वचन का रूप थोड़ा अलग होगा। वो होगा गमिष्यामि, भविष्यामि, उदेष्यामि, हसिष्यामि। तो देखा तुमने कि उन चारों शब्दों में, उन चारों धातुओं में उत्तम पुरुष या प्रथम पुरुष का रूप किस प्रकार बनता है। उन चारों धातुओं के जो रूप बने लृट लकार के भविष्यकाल के, वो एक अलग सूत्र के अनुसार, एक अलग फॉर्मूले के अनुसार बने। और जो बाद के श्लोकों में मैंने चार शब्द बताए, प्राप्स्ये, हनिष्ये, यक्षे, मोदिष्ये, ये चारों रूप एक अलग सूत्र, एक अलग फॉर्मूला लगा करके बने। हालांकि ये भी लृट लकार ही है, तो जो पहले चार धातु थे ऐसे धातुओं को हम परस्मैपदी धातु कहते हैं, और उनका जो भविष्यकालीन रूप बनेगा वो गमिष्यामि इस प्रकार बनेगा, अर्थात गमिष्यामि गमिष्यावः गमिष्यामः भविष्यामि भविष्यावः भविष्यामः भविष्यसि भविष्यतः भविष्यथ भविष्यति भविष्यतः भविष्यन्ति। इस प्रकार लृट लकार के तीनों वचनों के और तीनों पुरुषों के रूप बनेंगे। लेकिन जो दूसरी श्रेणी के धातु थे उन्हें आत्मनेपदी धातु कहा जाता है, और उनके रूप जो बनते हैं वो इस प्रकार बनते हैं जैसे प्राप्स्ये हनिष्ये। इसी आत्मनेपदी श्रेणी का एक बहुत जाना माना धातु है वंदना करना, जिसके लिए हम कहते हैं वंदे। तो वंदे मातरम का जो शब्द है वंदे, ये शब्द भी वंदना के धातु का आत्मनेपदी रूप है, क्योंकि यह धातु आत्मनेपदी धातुओं की श्रेणी में है। और वंदे मातरम में जो शब्द है वंदे, ये लृट लकार नहीं है, ये है लट लकार, अर्थात ये वर्तमान काल को दिखाता है। वंदे मातरम, मैं माता की वंदना करती हूँ। और ये लट लकार का शब्द है, उसके नौ रूप बनेंगे वंदे वंदावहे वंदामहे इस प्रकार से। तो उसी तरह इसका भविष्यकालीन रूप भी बनेगा वंदिष्ये वंदिष्यावहे वंदिष्यामहे इस प्रकार। तो थोड़ा ये अंतर है कि परस्मैपदी धातु के रूप किस प्रकार बनते हैं और आत्मनेपदी धातु के रूप किस प्रकार बनते हैं। कुछ धातु ऐसे होते हैं जो जिनके दोनों रूप होते हैं, उन्हें उभयपदी धातु कहते हैं। तो मित्रों, आज हम अपनी संस्कृत की चर्चा यहाँ पर समाप्त करेंगे। तुमने समझ लिया कि भविष्यकालीन रूप को दर्शाना हो तो शब्दों को किस प्रकार बनाया जाता है, उनके रूप किस प्रकार बनते हैं, इसको हमने समझ लिया। आगे अपनी इसी तरह से पढ़ाई जारी रखेंगे। तुम सुनते रहो रेडियो मधुबन, हमें SMS करते रहो 94-14-15-14-15 इस नंबर पर, हम प्रतीक्षा करेंगे। और ये जरूर बताना कि तुमने संस्कृत में कितनी अच्छी उन्नति कर ली, क्या अपने मित्रों में, पाठशाला में, घर में तुमने अपना कुछ संस्कृत का रोब जमाया या नहीं जमाया अभी तक, ये जरूर बताना हमें SMS करके। शुभम भूयात, नमस्कार।